हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरहम और ठाकुर को जेल में भेजने के बाद जोया ने अपने आप को काफी हल्का महसूस किया। उसने अपने सबसे बड़े गुनहगार को सजा दे दी थी। कहीं ना कहीं अरहम ने ही उसके साथ गुनाहों की शुरुआत की थी और आज जोया ने उसे सजा देकर अपने आप को हल्का कर लिया था। उसके बाद अचानक जोया को राजवीर सिंघानिया का ख्याल आया। वो अच्छी तरह जानती थी कि राजवीर के साथ उसे क्या करना था। वो उसे अपने जाल में पहले ही फंसा चुकी थी। अभी तक राजवीर को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन जिस दिन उसे इसका एहसास होता उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी ओर राजवीर सिंघानिया के कहने पर मेहर ठाकुर ने अपने भाई अरमान से सभी पेपर्स पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। जोया के प्लान के मुताबिक राजवीर ने वे सारे पेपर्स परोक्ष रूप से जोया के नाम करवा दिए थे। राजवीर सिंघानिया को इस बात का घमंड था कि उसके पास पहले से ही इतनी जमीन और दौलत थी कि जोया थोड़ी बहुत दौलत ले ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी कंपनी के साथ साथ अरमान ठाकुर की कंपनी के भी सारे शेयर जोया के नाम ट्रांसफर करवा दिए थे। जोया का उस दिन राजवीर सिंघानिया के घर पर जाने का प्लान यही था कि वो किसी तरह से मेहर को अपने जाल में फंसा ले। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेहर कितनी बेवकूफ लड़की है और वो आसानी से राजवीर की बातों में आ सकती है। राजवीर की पर्सनैलिटी को देखकर ही वो उसे पसंद करने लगी थी। वो उसके साथ शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना चुकी थी, तो वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर राजवीर उसे फिर बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा तो वो एक बार फिर उसके झांसे में आ जाएगी। और जैसे जोया ने सोचा था वैसे ही हुआ। कुछ सोचकर वो अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर अरमान ठाकुर को जैसे ही ये पता चला कि उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है और उस पर इतने सारे आरोप लग चुके हैं कि उसका अब जेल से निकलना मुमकिन नहीं है, अरमान गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो गुस्से से हॉस्पिटल के बेड से उठने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो उठने में नाकाम रहा और अपनी बेबसी पर जोरों से चिल्ला उठा। तभी अचानक अरमान की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जोया मुस्कुराती हुई अरमान के ठीक सामने खड़ी थी। जोया को देखकर अरमान और भी गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, ये तुमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे भाई को इस तरह से हमारे बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगी। तुम्हें इस तरह से मेरे भाई को सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए था। अरमान ठाकुर की बातें सुनकर जोया हंसे बिना नहीं रह पाई और जोरों से हंसने लगी। उसने कहा, ओहो अरमान ठाकुर, ये क्या लगा रखा है तुमने, मोहब्बत, वो भी तुम जैसे इंसान को, वो भी मुझसे। बस करो अरमान ठाकुर, अपनी हवस को मोहब्बत का नाम मत दो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरहम और ठाकुर को जेल में भेजने के बाद जोया ने अपने आप को काफी हल्का महसूस किया। उसने अपने सबसे बड़े गुनहगार को सजा दे दी थी। कहीं ना कहीं अरहम ने ही उसके साथ गुनाहों की शुरुआत की थी और आज जोया ने उसे सजा देकर अपने आप को हल्का कर लिया था। उसके बाद अचानक जोया को राजवीर सिंघानिया का ख्याल आया। वो अच्छी तरह जानती थी कि राजवीर के साथ उसे क्या करना था। वो उसे अपने जाल में पहले ही फंसा चुकी थी। अभी तक राजवीर को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन जिस दिन उसे इसका एहसास होता उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी ओर राजवीर सिंघानिया के कहने पर मेहर ठाकुर ने अपने भाई अरमान से सभी पेपर्स पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। जोया के प्लान के मुताबिक राजवीर ने वे सारे पेपर्स परोक्ष रूप से जोया के नाम करवा दिए थे। राजवीर सिंघानिया को इस बात का घमंड था कि उसके पास पहले से ही इतनी जमीन और दौलत थी कि जोया थोड़ी बहुत दौलत ले ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी कंपनी के साथ साथ अरमान ठाकुर की कंपनी के भी सारे शेयर जोया के नाम ट्रांसफर करवा दिए थे। जोया का उस दिन राजवीर सिंघानिया के घर पर जाने का प्लान यही था कि वो किसी तरह से मेहर को अपने जाल में फंसा ले। वो अच्छी तरह जानती थी कि मेहर कितनी बेवकूफ लड़की है और वो आसानी से राजवीर की बातों में आ सकती है। राजवीर की पर्सनैलिटी को देखकर ही वो उसे पसंद करने लगी थी। वो उसके साथ शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना चुकी थी, तो वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर राजवीर उसे फिर बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा तो वो एक बार फिर उसके झांसे में आ जाएगी। और जैसे जोया ने सोचा था वैसे ही हुआ। कुछ सोचकर वो अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर अरमान ठाकुर को जैसे ही ये पता चला कि उसका भाई गिरफ्तार हो चुका है और उस पर इतने सारे आरोप लग चुके हैं कि उसका अब जेल से निकलना मुमकिन नहीं है, अरमान गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो गुस्से से हॉस्पिटल के बेड से उठने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो उठने में नाकाम रहा और अपनी बेबसी पर जोरों से चिल्ला उठा। तभी अचानक अरमान की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जोया मुस्कुराती हुई अरमान के ठीक सामने खड़ी थी। जोया को देखकर अरमान और भी गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, ये तुमने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे भाई को इस तरह से हमारे बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगी। तुम्हें इस तरह से मेरे भाई को सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए था। अरमान ठाकुर की बातें सुनकर जोया हंसे बिना नहीं रह पाई और जोरों से हंसने लगी। उसने कहा, ओहो अरमान ठाकुर, ये क्या लगा रखा है तुमने, मोहब्बत, वो भी तुम जैसे इंसान को, वो भी मुझसे। बस करो अरमान ठाकुर, अपनी हवस को मोहब्बत का नाम मत दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा ये खूबसूरत जिस्म तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें क्या लगा, अगर मैं विदेश में थी, तुमसे दूर थी, तो क्या मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि तुम मुझे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे थे? तुम मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए ढूंढ रहे थे, ताकि तुम मेरे जिस्म को एक बार फिर नोच सको और अपने गुनाहों के निशान मेरे इस जिस्म पर छोड़ सको। लेकिन अरमान ठाकुर, मैं तुम्हें आज यहाँ पर एक बहुत बुरी खबर देने के लिए आई हूँ। तुम चाह कर भी मेरे जिस्म को अब नहीं नोच पाओगे। अगर मैं बिना कपड़ों के भी तुम्हारे सामने लेटी रहूँ या बैठी रहूँ, तो भी तुम मुझे नहीं छू पाओगे और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे ही जोया ने ये कहा, अरमान की आंखें हैरत से फटी रह गई और वो जोया की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगा। तब जोया मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? रिलैक्स, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारा भाई अरहम ठाकुर पूरे 30 सालों तक सलाखों के पीछे रहेगा, यानी मैंने उसकी पूरी जवानी बर्बाद कर दी है। उसकी पूरी जवानी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। तुम जानते हो, मैं चाहती तो उसे उम्र कैद की सजा भी दिला सकती थी या फिर फांसी की सजा भी करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं उसे केवल 25 से 30 साल की ही सजा दिलाना चाहती थी, ताकि वो बूढ़ा होकर बाहर आए और अपनी आगे की जिंदगी घिसते पीटते गुजारे। समझे तुम? इसीलिए मैंने उसे वहां पहुंचा दिया। पर अरमान ठाकुर, तुम जानते हो मैंने तुम्हें सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हें यहीं इसी अस्पताल में दे चुकी हूँ। जैसे ही जोया ने ये कहा, अरमान बुरी तरह चौंक गया और वो गुस्से से बोला, क्या बक रही हो तुम? तब जोया ने कहा, कुछ नहीं बक रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारे कमर के नीचे के सारे हिस्से को पैरालाइज्ड करवा दिया है। इतना ही नहीं, तुम अब कभी अपने दोनों पैरों पर नहीं चल पाओगे और पूरी जिंदगी इसी तरह से अपाहिजों की जिंदगी गुजारोगे। और इतना ही नहीं अरमान ठाकुर, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जिस दौलत पर तुम्हें इतना घमंड था ना, जिसके बलबूते पर तुम कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वो दौलत भी अब तुमसे पूरी तरह से दूर जा चुकी है। अब तुम एक कंगाल भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं हो। जैसे ही जोया ने ये कहा, अरमान का मुंह हैरत से फटा रह गया और वो जोरों से चिल्लाया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अरमान का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जोया क्या कह रही थी। तब जोया जोरों से हंसने लगी। अरमान ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि इतने दिनों से वो बेड से हिल क्यों नहीं पा रहा था, जबकि उसने जिम में इतना पसीना बहाया था कि वो कितने ही आदमियों को आसानी से मार गिरा सकता था, और अब वो जरा सी मारपीट के बाद उठ नहीं पा रहा था। अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। अरमान गुस्से से जोया को उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तब जोया ने अरमान से कहा, तुम्हें मैं इसी के साथ साथ ही गुड न्यूज भी देना चाहती हूँ। अरमान ठाकुर, तुम्हारा आधा हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज तो हो ही गया है, साथ ही साथ तुम जिंदगी भर कभी भी बाप नहीं बन पाओगे। पर इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि तुम ऑलरेडी बाप बन चुके हो, क्योंकि मेरी कोख से तुम्हारी बेटी ने जन्म लिया है। जैसे ही जोया ने ये कहा, अरमान की आंखों से आंसू निकलने लगे और जोया बिना कुछ कहे अरमान को उसी हालत में छोड़कर उसके कमरे से बाहर निकल गई। अरमान के कानों में केवल जोया के आखिरी शब्द ही गूंज रहे थे, मेरी कोख से तुम्हारी बेटी ने जन्म ले लिया है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता है। मतलब कि अरमान ठाकुर बाप भी बन चुका था, लेकिन वो बाप बनकर भी बाप नहीं था। जोया की बात सुनकर अरमान की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। अरमान अपनी जिंदगी में पहली बार इतना रोया था कि ऐसा लग रहा था कि अस्पताल की दीवारें भी उसके साथ रो रही हों। लेकिन शायद पूरी जिंदगी अरमान ठाकुर को उसी तरह से रोते हुए उसी हॉस्पिटल बेड पर या फिर व्हीलचेयर पर ही गुजारनी थी। अरमान ठाकुर से मिलने के बाद जोया सीधा चांदनी के होटल में चली गई। जोया अपने सबसे बड़े दो दुश्मनों से बदला ले चुकी थी और उसने अपने अपने मुताबिक उन्हें सजा दी थी, क्योंकि जोया नहीं चाहती थी कि ना तो अरमान ठाकुर या फिर अरहम ठाकुर और किसी भोली भाली लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करे जैसा उन्होंने उसकी की थी।